ઉપર સ્વામીજી પોતાનું પ્રવચન આપે એવી હું આપ સૌ તરફથી વિનંતી કરું છું. આશા છે આપણે સૌ એની અંદર આપણે સૌ એની અંદરથી બોધ લઈશું.
પંજાબ કે ગુરમેલ સિંહ, દિલ્હી કે જગદીશ, અશોક ભારદ્વાજ, શાંતિભાઈ ઢાલવડ વાલે, પંડિત હમારે બંબઈ કે કમલેશ છબીલદાસજી, અમરોલી કે બિહારીલાલજી, જે શ્રી પટેલ વગેરે સબકી ઈચ્છા સમ્માન રખા ઓર હમને કહા કે ભાઈ અભી તો જમદેવ હમ કઈ બાર મનાયેંગે, લેકિન હમારે બીચ મેં ઇસ પરિવાર કે વડીલ અંબાલાલ સાહેબ બહુ નિકટ કી સ્થિતિ ઉપસ્થિતિ મેં રહેને વાલે વાચી ઉપેન્દ્ર સિંહ, સોમ સિંહ પરમાર કે ને પ્યાર સે મુન્ના કહા જાતા, હમ ભી મુન્ના હી બન ગયે થે. શ્રદ્ધા અટલ મોબાઈલ્સ કે દોલ ભાઈ દેસાઈ 35 સાલ સંપર્ક મેં હૈ, દિન રાત આશ્રમ કી સેવા મેં રહેને વાલે જયંતી ભાઈ કા પુત્ર ઓર પત્ની કા ઉઠામ ઓર સારી માતાઓ કે માતાઓ દ્વારા ઔર હમારા જો કોઈ સંબંધ થા થોડા જિક્ર કિયા તો સંબંધ તો થોડા રહતા હી હૈ. વિશ્વનાથ પ્રતાપ સંઘ તો આ તમને કહા કે ભાઈ સાદગી સે મનાયા જાય, પત્રકારોને ભી કહા સ્વામીજી ક્યા કરે, ઇતના તો સૂચના આપ દે સકતે હૈ કે સાદગી સે હમ મનાયેંગે જો માના કહા જા સકતા હૈ. જયેશ પટેલ અગેન્સ્ટ ગાંધી ને વિકાસ સ્વામી જે પત્રિકા વગેરે છપવાની હૈ, મને કહે કે સાદગી સે કરના હૈ તો ક્યા છપવા હૈ, ફિર ભી ફોન કે માધ્યમ સે અગર કોઈ પૂછતા હૈ તો કહ દેના કે ભાઈ આપ 14 જનવરી આઈએ પધારીએ સમય બોલીએ. તો ઇસ તરહ સે સાદગી કા ધાર લે કરકે આજ સાક્ષાત કર મના મેરે પ્રિય આત્મન, બહુત અભી કાર્યક્રમ જન દિવસ મનાયેંગે, લેકિન જો અપને બીચ મે સે ગયે ઉનકો સ્મરણ કરને કે કારણ કે સાથ જૈસા કા માસ્ટર સાહેબ ને સાદગી મે થોડી આપકે બેઠને કી વ્યવસ્થા ભી બરાબર નહીં રહી, આને જાને મે ભી તકલીફ હુઈ હોગે, તો મેં આપકા હું આપ મેરે હૈ, અપના સમજ કરકે મુઝે માફ કરના ઓર અપને સાદગી કે કાર્યક્રમ મે આનંદ સે હિસ્સે દાર કરના. વિષય રખા ગયા મન કો કૈસે લગાએ, મન કો કૈસે જીતે, પૂર્ણ મન કી બાત હૈ મહાસાહેબ, ઉસમે આપને દો બાર કહા મન કૈસે લગાએ, મન કો કૈસે જીતે, પૂર્ણ મૂળ મૂળ બાત તો મન કી હૈ, ઉસમે વિષય મે કોઈ ફર્ક નહીં પડતા, મન કૈસે લગાએ કે મન કૈસે જીતે, ચાહે મન લગાને કી બાત આએ કે જીતને કી બાત આએ, લેકિન મન કો સમજના. आपके मन में बड़ी जबरदस्त शक्ति है, हम आप कहीं भी इस धरती पर आए तो पूरे अंतरिक्ष की पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हम लेकर आए, आपका विज्ञान भी सामर्थ हो गया कि हम पूरी शक्ति लेकर आए, जन्म से हम आप कमजोर नहीं है, ठीक से संस्कार का सिंचन नहीं हुआ, पर्यावरण नहीं ठीक मिला, इसलिए मन जो शक्ति लेकर आया था वो कमजोर है नहीं, लेकिन पर्यावरण के कारण, एनवायरमेंट के कारण, संपर्क और संसर्ग में आकर के वो कमजोर जैसा हो जाता, कमजोर नहीं है, कमजोर जैसा हो जाता, मन चंचल भी नहीं है, क्योंकि आपका विज्ञान भी कहता है मन का स्वभाव अगर आप चंचल समझते हैं तो हमारे ऋषि मुनि तो कहते ही हैं, लेकिन आपका विज्ञान भी कह रहा है मन का स्वभाव अगर चंचल है तो स्वभाव का परिवर्तन जो कुदरत से प्राप्त है कोई नहीं कर सकता। इसलिए चंचलता मन का स्वभाव नहीं है, मन कुछ प्राप्त करना चाहता है उसकी खोज में वो चंचल सा दिखाई पड़ता है। हम नौकरी के लिए दौड़ते हैं, नौकरी मिल जाती है फिर स्थिर हो जाते हैं, हमें भूख लगती है दौड़ते हैं, प्यास लगती है पानी के लिए दौड़ते हैं, ये हमारी दौड़ कुछ प्राप्त करने के लिए है, इसलिए आपको लगता है वही दौड़ है, दौड़ है। जन्म से हम और आप अगर अपने शक्ति को देखें, यहां जितने भी बैठे हैं, जब कह रहा हूं कि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति आप में उतरी है, हमारा आपका शरीर पंच महाभूत से बना, हम कहीं भी जन्म, हम पुत्र के रूप में या पुत्री के रूप में, पंच महाभूत आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, आकाश की सीमा है, वायु की कोई सीमा है या विचार है, एक पंच महाभूत में आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी है, लेकिन मूल जो आकाश और वायु है उसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए समझिए नर और नारी के रूप में हम जितना अपने जीवन का विकास करना चाहें और आगे बढ़े और आगे बढ़े, ये आपका स्वभाव है, चंचलता नहीं है, आप लालची नहीं है, आपका धर्म है, लालच और धर्म में अंतर है, आगे बढ़ना यह आपका स्वभाव है, स्वभाव धर्म है, यही स्वभाव का आधार लेकर हमारे कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा तेरा स्वभाव क्षत्रिय दुष्टों के खिलाफ युद्ध करने का है, अब वो स्वभाव का त्याग नहीं कर सकता, तो हम आप स्वभाव से चंचल नहीं है, नहीं कुछ प्राप्त करना चाहते, इसलिए कभी नहीं कहना चाहिए कि आदमी लालची है, कोई कहते महाराज ये तो दिन रात पैसा कमा रहा है, ये दिन रात पढ़ रहा है, ये दिन रात भजन कर रहा है, निर्णय आपके हाथ में, मैं इस भेष में आया तो बहुत कुछ तो बताना नहीं चाहता, लेकिन 12-12, 13-13 घंटे गुरु आसन पर बैठा था, भूखा भी रखते थे, बहुत कुछ करते थे आगे बढ़ाने के, मेरा शिष्य आगे बढ़े, આપ મને પણ પુત્રી કે પ્રથવી અમર સિંહ કે પુત્રી પેનલ ઉસકી સહેલિયાં દિલ્હી નિવાસી મેરે પ્રિય સુશીલ વંદના બેટી કી લડકી શુભાંગિની એ જો કુછ આપ દેખેં માતા પિતા ગુરુ કા ભાવ હૈ ઔર ઉનમે ભી ભાવ હૈ કે હમ મહેનત કરકે આગે આયે યે સ્વભાવ હૈ इसलिए सबसे पहले कमजोरी आपका स्वभाव नहीं है, हताशा निराशा ये आपके मन में बाहर से पर्यावरण से आप लाए हैं लेकिन जन्म से नहीं लाए। पानी स्वच्छ है उसमें रंग आपने लाए, रंग लाल भी हो सकता है और काला भी हो सकता है लेकिन पानी मूल रूप से स्वच्छ है, जमीन पवित्र है। इस पवित्र जमीन में से आप क्या पैदा करना चाहते हैं? आम का बगीचा, गुलाब का बगीचा या घास या बाबर? जमीन का कोई संकल्प नहीं है, जिसका संकल्प नहीं है वो अस्तित्व है और जिसका अस्तित्व है उसकी मदद हमें चाहिए, हमारी उसको मदद नहीं है। परमात्मा एक अस्तित्व है, उसी का स्वरूप आकाश वायु वर्णी जल और पृथ्वी है जो सघन होकर के आप प्रकट हुए, इसी का विस्तार भगवान ही कर सकता है। अगर आपकी झुकड़ी कमजोर है कितना सिंचन करें, खाद दे पानी दे लेकिन कमजोर झुकड़ी वृक्ष के रूप में प्रकट होने वाले नहीं। आपके घर पर हम आए, आपने हमारे स्वागत में बादाम का हलवा बनाया लेकिन मेरी होजरी कमजोर है, मुझे फीवर है, मुझे ताव है। मैं कहता हूं कि बादाम का हलवा नहीं खाता, आप अपनी कमजोरी व्यक्त करते हैं। बादाम का हलवा जब आप स्वस्थ हैं, आप में शक्ति है तो बादाम का हलवा आपकी शक्ति की वृद्धि करेगा, आपकी शक्ति को बढ़ाएगा। और अगर आपका शरीर कमजोर है तो शायद दूध पीने से भी तकलीफ हो सकती है, लेकिन जो बार बार आपको इशारा कर रहा हम आप सब पूरे विश्व की बात करता, हम आप परमात्मा की संतान है, परमात्मा का पूरा गुण हमारे आप में मौजूद है। लेकिन परमात्मा भी जब इस धरती पर आया तो हमें आपको अपनी शक्ति को प्रकट करने का विधि विधान मिलता है। जितने भी अवतार हैं जबरदस्त अपने जीवन में सफलता लाने के लिए विगत से विगत परिस्थिति से गुजरे, चाहे वो मन में पैदा हुए या भाव में पैदा हुए, चाहे पुरानी बातें करूं कि आज की बातें करूं, मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि आपका जन्म महल में हुआ राम की तरह या आपका जन्म किसके तरह भाव में जेल में हुआ। सिर्फ ये बताऊंगा कि आपका जन्म कहीं भी हुआ लेकिन आप शुभ कर्म से गए, संकल्प से गए, संघर्ष को स्वीकार करके विकट से विकट परिस्थिति में सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपका तन और मन कमजोर होना नहीं चाहिए। किसी का तन कमजोर हो गया तो है अच्छे अच्छे वैद्य हैं डॉक्टर, लेकिन अगर मन कमजोर हो गया थोड़ा मुश्किल हो जाए। आप सत्संग में क्यों आते हैं? कि बाहर से दूसरे के अभिप्राय से, दूसरों का विचार, यहां से ऐसे डॉक्टर बैठे हैं, प्रोफेसर बैठे हैं, आपके शरीर में जब पीड़ा आती है, तकलीफ आती है, तो डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर आपको हेल्थ स्वास्थ्य नहीं देता, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी कमजोरी है वो निकालता है। डॉक्टर स्वास्थ्य नहीं देता, आपके शरीर की कमजोरी किन कारणों से आई वो जान जाता है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए उपाय करता, जिसे आप मेडिसिन बोलते हैं, दवा। और दवा से जब आपकी कमजोरी दूर हुई तो डॉक्टर कहते हैं अब आप स्वस्थ हैं। कुछ बातों से आपका मन भी बीमार हो जाता है। संसद में मन की कमजोरी को हम गुरु लोग, संत लोग दूर करते हैं। जैसे शरीर की कमजोरी दूर होते ही आप स्वस्थ हो जाते हैं, ऐसे सत्संग के माध्यम से, साधना के माध्यम से आपकी मन की कमजोरी दूर हो जाती है और आपका मन अपनी शक्ति को पहचान करके विकट से विकट परिस्थिति में भी चलने के लिए तैयार है। तो सत्संग के माध्यम से हम आपके मन को तैयार करते हैं। मन को स्वस्थ था, अगर मन कमजोर होता तो कुछ नहीं कर सकते। मन अगर बावड़ दिखाता, कांटा पैदा करता तो हम कभी नहीं दूर कर सकते, चाहे वो हजार साल तक नदी किनारे पर। ये नदी किनारा है, नदी किनारे 5 वर्ष का आम का पेड़ है कि 50 वर्ष का है कि 500 वर्ष का है, वो फली देगा, आम देगा। और किसी ने बावड़ का पेड़ भी नर्मदा किनारे लगाया है तो 1,00,000 बरस का हो, लेकिन 1,00,000 बरस होने पर भी वो फल देने वाला नहीं, वो तो कांटा ही। कितने लोग मेरे पास आते कहते महाराज जी मेरी उम्र 90 साल की हो गई तो ब्याज निकालता हूं, आप आम का बगीचा हो तो बावड़ का चुप हो जाते, मुझे उम्र से कोई मतलब नहीं, आपके विचार होंगे। हमारे संतों के देखे छोटे छोटे उम्र में कितने गए, जान विचार थे। इसलिए मैं कभी किसी से नहीं पूछता कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके पिता क्या है, आपकी उम्र क्या है, सिर्फ एक पूछता हूं आपका विचार सशक्त कितना है। अगर विचार सशक्त है तो वरदान प्राप्त होलिका को भस्म करने के लिए बालक प्रहलाद का भी विकट से विकट परिस्थिति आई, जानता भी है प्रहलाद कि मेरे पिता के पास सिद्धियां, न दिन में मरेगा, न रात में, न ऊपर, न नीचे, न नर से, न पशु से, लेकिन छोटे बालक प्रहलाद पर विश्वास है कि मेरी साधना सच्ची है। इसलिए कोई कितनी सिद्धि प्राप्त कर ले और अच्छे का जो विरोध करेगा अच्छा परेशान होगा, और अच्छे का जो विरोध करेगा उसका सत्यानाश होगा। आज भी देख लीजिए, नाम वगैरह लेने की जरूरत नहीं, लेकिन विचार दे रहा मैं उम्र पे नहीं जाता, आत्मिक शक्ति प्राप्त करके रावण या हिरण्य कश्यप के रूप में शिशुपाल के रूप में प्रकट होता है तो बुरा न मानिए। मैं राम की बात करूं, किसकी बात करूं, गांधी की बात करूं कि विवेकानंद की, कि स्वामी रामतीर्थ की, कि बुद्ध की, कि महावीर की, कि स्वामी साजानंद की, कि आपके, कि कबीर की, कि सूरदास की, शेक्सपियर की, मिल्टन की, लॉन्गफेलो की, या आपके बचपन में इनके मन में स्वस्थ विचार था जो समय पर प्रकट हुआ दुनिया जाने, लेकिन बचपन से, अब बचपन से अगर आपका विचार स्वस्थ है, आने दो हिरण्यकश्यप को विरोध कर सके जो आपका विरोध, आने दो शिशुपाल को, आने दो प्रशासन को, जिस समय हमारा देश गुलाम था उस समय देखा जाए, संत ज्ञानेश्वर की बात करें, विवेकानंद की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की करें, अगर देखा जाए तो बालपन से ही इनमें इतनी शक्ति थी कि इतने बड़े बड़े दिग्गजों को उन्होंने हरा करके उनके घर वापस कर दिया। तो आपकी बात कर रहा है, किसी में कितनी शक्ति प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर आप अच्छे रास्ते चल रहे हैं तो किसी के अभिप्राय से मेरे प्रिय आत्मन भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये भय हमारी शक्ति का सत्यानाश कर रहा है, ये भय ही तनाव पैदा करता है। यहां अच्छे अच्छे डॉक्टर बैठे हैं, मैं कर रहा हूं, यहां पर थायमस ग्लैंड है, थायमस नाम की ग्रंथि है, जब आप में भय पैदा होता है, भय का तनाव होता है, तो ये ग्रंथि ऊर्जा जनरेट नहीं कर पाती, इसलिए आप कमजोर हो जाते हैं। और जब आप सहज रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो ये बहुत ही एनर्जी जनरेट करती है, और इतनी जनरेट करती है कि चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो, लेकिन गलत है तो ये बालक ही उसका सत्यानाश करते है। ये बार बार बालक की बात क्यों कर रहा था, बालक पर तनाव। मैं आपको आज बच्चा जैसा बनाना चाहता है, चाइल्ड लाइक ना द चाइल्ड, एक बार बच्चे बन जाइए, बच्चों को कल का भय, आज कितने मस्ती और आनंद से है विचार कर, इस क्षण की बात लो, पूरा विश्व देखे, घटनाएं बहुत घट रही होंगी, लेकिन नर्मदा के किनारे दूर दूर से अच्छे विचार लेकर आप आए, आप और हम आनंद से यहां बैठे हैं। आज का आनंद जब आप वापस जाते क्यों खत्म हो जाता है, लोगों के अभिप्राय से, विचार से। आप इस समय अपने हैं, अपने में हैं, अपने गुरु में है, अपने विचार में है, यहां से हटते ही दूसरों में चले जाते हैं, सत्यानाश हो जाते, आप अपने को भूल जाते हैं, अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाते। या विचार अगर आज आनंद है तो कल क्यों गायब हो गया, इसलिए गायब हो गया कि आप अपने से दूर रखें, किसी ने कुछ कर दिया। जब आप अपने में है तो जबरदस्त है, बालक मतलब अपने में, लेकिन बालक भी काम करता, मन को लगाने की बात या जगाने की बात, कुछ भी लगा दीजिए, लेकिन मैं आप सबसे कहता मन में इतनी अटूट शक्ति है, रेकी क्या है कि मन का संकल्प ही तो। आजकल इसका बहुत प्रचार, बड़ी ट्रेनिंग हो रही है और उसमें एक नियम बताता, जो लोग रेकी का अध्ययन करते हैं परफेक्शन आने पर दूसरे पर उसका असर डालते हैं, उसमें जो कह रहा है समझिए, पहले उसे प्रेम से अपना मानते हैं, प्रेम से, और जहां अपना मानोगे उसमें रुचि होगी और रुचि होगी तो प्रसन्नता होगी, इसलिए थाइमस इतनी एनर्जी पैदा करता है कि उसे हम ट्रांसमिट कर देते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। मेंटल टेलीपैथी में भी यही है कि जिसे आप प्यार करते हैं, आप में कोई भेद नहीं रहता, आप जो चाहें दे सकते, चाहे वो बाबा रुमान की बात हो, घटनाएं बहुत घट रही, प्रार्थना से भी, भजन से भी। पहले विज्ञान ने सब नहीं मानता था, लेकिन आप विज्ञान मानने कि विचारों की शक्ति अपरंपार है। मन कहां कहां कमजोर होता है, आप कैसे कैसे बीमार पड़ते हैं उसका पता लग जाए, उपाय हो जाता है और आप स्वस्थ हो जाते हैं। मन कहां कहां कमजोर किस तरह होता है वो अगर हम समझ लें तो समझने के बाद वो कमजोरी निकल जाती है। अब कमजोरी निकलते ही आप मन से स्वस्थ हो जाते हैं। हमारी संस्कृति का आधार रहा कि मन और तन दोनों स्वस्थ हैं। हमारी जो पूजा पद्धति है, न्यास जो विधि है, वो पूरी की पूरी एक्यूप्रेशर जैसे, एक्यूप्रेशर की बात करूंगा तो आप माने, न्यास की बात करूंगा नहीं माने, ताली बजाने की बात करूंगा कुछ मानेंगे कुछ नहीं मानेंगे, हंसने की बात करूंगा, आजकल तो हैदराबाद में कैसे ताली बजाना चाहिए, कैसे हंसना चाहिए वो सिखाना चाहिए, क्या विचार करो, इससे कितनी ऊर्जा पैदा होती है। और आपको बता दूं, वैज्ञानिकों ने भी बताया है, पूजा करते समय जब आप प्रसन्न रहते हैं, किसी को देख करके प्रसन्न होते हैं, किसी का सत्कार करते हैं, संगीत के माध्यम से, गायन के माध्यम से, रासलीला के माध्यम से, अभी हमारे बच्चे आपके सामने भजन गाए, देश प्रेम का गीत गाया, सरस्वती वंदना की, तो उस समय सबके चेहरे आंख बंद करके देख रहा था, सबके चेहरे पर अंदर का आनंद प्रकट हो गया था, सब हंस रहे, अंदर आनंद था, प्रकट हुआ सच्चिदानंद। और आपको बता दूं, किसी भी माध्यम से जब आनंद प्रकट होता है तो आनंद प्रभु का स्वरूप है, और उस समय बच्चों को आप और हम जो आशीर्वाद दिए वो कभी व्यर्थ जाने वाला। हमारे यहां माता पिता गुरु को प्रणाम करने की बात क्यों की, आज विज्ञान में अपने बच्चे की सफलता देखकर, अपने शिष्य की सफलता देखकर, जब आप प्रणाम करते हो तो माता पिता गुरु आनंद आता है, और इसलिए माता पिता गुरु आनंद में जो आशीर्वाद देंगे वो कभी व्यर्थ जाने वाला। मैं कोई राजनीति में भाग नहीं लेता, लोग मेरे संपर्क में हैं, जानते हैं। जब इलेक्शन की बात गुजरात में आई, काफी लोग थे, किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी आप ज्योतिष जानते हैं कि नहीं, मैंने कहा जानता हूं कि नहीं जानता, लेकिन आप क्या पूछना चाहते हैं। कहते नरेंद्र मोदी जीतेंगे कि नहीं, मैंने कहा जीतेंगे, कार्तिक आधार पर कहते हैं रोज माँ का आशीर्वाद ले रहा है, इसलिए माँ का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। उधर भी 3-4 हजार लोग थे जो बैठे उस काम से, माँ का आशीर्वाद ले रहा है, माँ का आशीर्वाद कभी व्यर्थ आज दस इंच कम हो सकती है, आज दस इंच कम हो गई माँ का कमर से मिल स्वामी जी ने दस इंच कहा था आगे दस दस इंच कम है और भी बहुत लोग थे भोजन साहब भी थे सबसे। तो मैं किस आधार पर कहा विज्ञान है कि माता पिता का आनंद के क्षणों में दिया हुआ आशीर्वाद बुरा मान गएगा। केवल सावित्री की बात नहीं करता, सावित्री के अंदर जो भाव था अगर सावित्री वाला भाव आ जाए तो यमराज को भी पीछे हट करके हम जो चाहते हैं। अरविंद घोष का सावित्री पढ़िए, उसमें भी मन की बात करूंगी, कहानियां कुछ भी हो किसी के झूठ की बात नहीं किए कुछ बताना चाहता फिर कहां कहां कमजोर बनते वो मैं बताऊं। मैं आपका अंदर का डॉक्टर हूं, अगर आपकी कमजोरी बता दूंगा तो बिना मेरे पूछे निकाल के फेंक आपको पता चले कांटा कहां चुभा है दर्द कहां होता है, कांटा चुभा पाऊं मैं उसको जरूर उठे बात ध्रुव के क्या बात था जा सोचो उत्तम पाद की बात है, उत्तम बैठा है ध्रुव बैठे है वहां जो घटना घटी वो सब नहीं करता। अरे बेटा सुनी थी उसकी मां सुनी थी अच्छी नीति बताने वाली। अरे बेटा ये बोल रहा है तू तब कर अब तो आकाश में जगह मिलेगी वो तुम्हें क्या छोटी उम्र का ध्रुव श्रद्धा विश्वास के बल पर कितना कमाल कर गया तो आप क्यों नहीं कर सकते। उसका एक ही कारण है हम बच्चे जैसे बनना नहीं चाहते बस वही कर रहे हम तो एक माला घुमाते देखते भगवान आएगा नहीं आएगा उसे हिसाब किताब करते ना विचार कीजिए। बच्चे ने कभी माता पिता से हिसाब किताब किया करता होगा तो 40 साल के बाद लेकिन बच्चे के रूप में नहीं। शंकराचार्य जी की उम्र क्या थी, संत ज्ञानेश्वर की उम्र क्या थी, तो इस समय एक बात ही कहना चाहता था आइए हम उस देर के लिए बच्चों जैसे हो जाए और फिर नहीं बात क्योंकि बच्चा माता पिता गुरु में शंका नहीं करता, शंका गुरु में जिज्ञासा हूं आपको फिर से बच्चे के रूप में इसलिए लाना चाहता हूं कि जो कहूं उसमें शंका नहीं करना, शंका करोगे तो 40 साल को उसको समझाना बड़ा मुश्किल। मैं बच्चे को समझा करता लेकिन 40 साल वाले को उसके मन में तो बहुत कंप्यूटर है पहला तो कंप्यूटर है। आप बहुत अच्छे हो स्वामी जी के जन्म दिवस पर जाओगे तो क्या देगा कोठी देगा कि फैक्ट्री देगा आप कोठी और फैक्ट्री मानते हो अरे मेरी बात मानिए तो पूरे ब्रह्मांड के आपको मैं मालिक बना अगर कृष्ण ने मिट्टी खाने पर अपनी माँ को अपने अंदर ब्रह्मांड दिखाया तो बिना मिट्टी खाए श्रम करके मेरी बात मान के आपको मिट्टी भी नहीं खाने पड़ेगी आपको पूरे ब्रह्मांड का मालिक बना दूंगा। जा विचार अब जो मन कहां कहां कमजोर होगा वो आप उस कमजोरी को समझ ले। मेरे प्रिय आत्मा किसी ने कुछ कह दिया बचपन में कहानी पढ़े होंगे आप एक पवित्र विद्वान ब्राह्मण गाय का बाछड़ा लेकर जा रहे हैं तेल ठग है। मैं केवल इशारा कर रहा हूं कि दूसरे का ख्याल से हम कितने भ्रमित हो जाते हैं। पंडित जी क्या ले जा रहे हैं? घर का वासर कहते तो कुत्ते का बच्चा है, चुप ना। थोड़ी दूर पर दूसरा ठग मिला, उसने भी यही कहा। पंडित जी कहते आज भांग भंगा तो नहीं पी लिया। फिर तीसरा ठग मिला, एक विद्वान व्यक्ति केवल तीन ठगों के कहने से अपने विचार को बदल दिया। यहां दिन में 10 बार लोग बेकार की बात करते हैं तो पढ़े लिखे का भी विचार को बदल दिया। जिस चीज को आप समझे अगर आप बदल गए तो समझे क्या है, बोले सारी दुनिया को। आप हैं पोपट, आप सीताराम बोलते, बगीचे में कागले बहुत पोपट होंगे, 100 कागले होंगे 2000। मेरे प्रिय आत्मा, दोनों की रचना में नेचर है और दोनों का स्वभाव अलग अलग है। क्यों है, कैसे है, नेचर जाने परमात्मा ने। लेकिन विज्ञान का ताज उनकी जरूरत है, वो पर्यावरण को कंट्रोल कर। लेकिन इस समय इतना ही कहूंगा, हम आप जब धरती पर आए तो भगवान ने हमें आपको हंस बनाया, पोपट बनाया, शेर बनाया। उसकी दुनिया में बकरी भी रहेगी, गीदड़ भी रहेगा, कागला भी रहेगा। लेकिन जो आप हम यहां बैठे हैं, आपको सीताराम बोल, 1000 लोग कागले तरह काम पाव करेंगे। कागला जब अपना, कौआ जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो हम लोग सीताराम छोड़ के काम खाऊ क्यों करने लगते हैं? अगर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो आप अपना स्वभाव क्यों छोड़ते? स्वभाव तो आपका सीताराम का है, लेकिन दूसरों के राय से एक बनावटी आदमी बन गए। और बनावटी आदमी बनते ही काम काम करके कागले का सत्यानाश नहीं किया, अपना सत्यानाश। कागला तो अपनी जगह ही है, लेकिन आपने अपना सत्यानाश किया। इसलिए सबसे पहले दुनिया में तीन ठग नहीं, बहुत ठग है। इन ठगों से होशियार रहो। कोई कहेगा तुम्हारा पैसा डबल कर दूंगा, कोई कहेगा ये कहेगा। एक बार की बात बताए, कोई आया मेरे पास कहे महाराज जी ऐसा वो था, ऐसा रंग था, ऐसा कपड़ा था। मैंने कहा बात क्या? कहा वो पैसे को डबल करने का चक्कर में मेरा 50,000 ले गया। मैंने कहा 50,000 1,00,000 होता तो मुझे कितना कमीशन मिलता, जो पूछने दिया। वो चला गया तो पूछ रहा हूँ ऐसा ऐसा वो था, उस समय क्यों नहीं पूछा, को डबल करना जानता है कि नहीं जानता? आज लोग पढ़े लिखे पूरा वेद उठा के देखिए, हमारे राम को देखिए, हमारे कृष्ण को देखिए, भगवान बुद्ध को देखिए, महावीर को देखिए, साजानंद जी को देखिए, कबीर को देखिए, सबकी बात सब्सक्राइब को देखिए, पीर पैगंबर को। इतनी बड़ी हस्तियां शक्तियां धरती पर आई और उन्हें जो कुछ प्राप्त हुआ, सिद्धि प्राप्त हुई, जीवन प्राप्त हुआ, कर्म से प्राप्त हुआ। और आप पड़ोसी से पैदा उधार ला करके डबल करके आनंद से रहना चाहते, ये फार्मूला कहां से सीख रहे? बिना कर्म किए हमारा कृष्ण क्या उपदेश दे रहा है कि मैं तेरे साथ हूं? गांधी तेरे उत्थान पर, गांधी मतलब कर्तव्य, जो स्वभाव। सभी डॉक्टर नहीं हो सकते, नहीं बोल सकते कुछ डॉक्टर बनाएंगे। सभी कलेक्टर नहीं हो सकते, नहीं कुछ बनाएंगे। व्यवस्था एक बार मुझे किसी ने पूछा, थोड़ा बहुत मेरा जीवन उनको मालूम है, क्या स्वामी जी आप तो ये हो सकते थे, ये हो सकते थे, हो सकते। मन का जो कुछ आप करते हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन टैगोर के बाद मुझे याद आ गई। टैगोर ने लिखा है, आई कैन नॉट टेल द बेस्ट, द बेस्ट टैगोर से भी जब प्रश्न किया गया, उन्होंने कहा परमात्मा की नजर में जो काम अच्छी तरह कर सकता था वो रोल मुझे मिला है और मैं जरूर अदा कर रहा हूँ। परमात्मा की नजर में मनीषानंद को एक अच्छा सन्यासी बनना था, बना हूँ, अच्छा बना रहूंगा और उसकी परमात्मा की इच्छा की परमात्मा की इच्छा मापे गए डॉक्टर, एक आप अच्छे प्रोफेसर है, एक आप व्यापारी है, एक अच्छे पिता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है हर क्षण अगर परमात्मा को याद करोगे तो आपकी क्या जिम्मेदारी है वो याद रखो, परमात्मा को सदा साथ रखो तो आप भूलेंगे। अब कहानी से समझा दो, विगत से विगत परिस्थिति में भगवान कृष्ण परमात्मा अर्जुन के साथ रास्ता निकला, सफलता मिली, लेकिन एक बड़ी मर्म है। एक व्यक्ति आगे कहता है कि कुछ दुष्ट लोग मेरी पुत्रियों का हरण करके ले जाते हैं। अर्जुन भगवान को उत्तर देखा भी नहीं, कहा भी नहीं, कहा चलो मैं भी आता हूं। आप कहानी जानते कहा अर्जुन रुपया वही धन वही बात पर खा करके अर्जुन वापस आ गया। भगवान मुस्कुराने लगे, क्या बात है? कहा प्रभु कुछ समझ नहीं, कहा मैं समझाऊं, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा हो अर्जुन, लेकिन अपने इष्ट को साथ रखना चाहिए। जब तुमने मुझे साथ रखा तो विकट से विकट परिस्थिति में मैंने तेरे को रास्ता दिखाया और आज मुझे पीछे छोड़ के चला गया और थप्पड़ खा के वापस आ जाओ। काम छोटा करो कि बड़ा, लेकिन अपने परमात्मा को सदा साथ रखोगे तो तुम्हारी विजय ही विजय। कभी यह मत कहो इनके बिना काम चलो, उनके बिना नहीं चल सकता। एक नास्तिक मेरे पास आया, स्वामी जी मैं भगवान को नहीं मानता। मैंने कहा करते क्या, लकड़ी का व्यापार नास्तिक कैसे करे, पर उनके आस पास पड़ोसी अच्छे नहीं। मैंने कहा अच्छा बताए आप लकड़ी का व्यापार करते हैं, लकड़ी पैदा कहां होती? कहते जंगल में, और जंगल में किस तरह होती है? कहा होती है तो होती है, आपने तो नहीं बनाया। तो ये जो होती है क्या मानते हो? नेचर मानते हुए परमात्मा कुछ तो मानना पड़ेगा। कहते हाँ कुदरत देती है, तो कुदरत जिसे आप कुदरत कहते बिना समझे उसी को हम साधु संत भक्त समझ के परमात्मा बोल देते। कुदरत की मदद के बिना तुम व्यापार नहीं कर सकते, इसलिए याद रखो कुदरत की मदद के बिना, परमात्मा की मदद के बिना तुम ना उठ सकते हो, ना चल सकते हो, ना देख सकते हो, ना बोल सकते हो, ना भूल सकते हो। समझा दो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, सबको समझने की बात है। आप चली जाए आप जिंदा है, ये बात चली जाए आप जिंदा है, कान के पर्दे चले जाए आप जिंदा है, लेकिन अगर श्वास चले जाए तो ये श्वास क्या है? श्वास आप लेते हैं, सोते समय कौन श्वास चला रहा है? श्वास को देख रहे हो? पढ़े लिखे लोग कहते महाराज जी परमात्मा है तो मुझे दिखाइए। मैंने कहा तुम अपने श्वास दिखा दो तो परमात्मा दिखा। ये अनुभव की बात है। आप गुलाब जामुन खा रहे हैं, मीठी है, जब तक मैं नहीं खाऊंगा पता कैसे चलेगा? आकार तो देख रहा हूं। आप बताइए श्वास का संचालन कौन करता? चुप हो गए। इसे आप कुदरत मानिए, लेकिन आपको मानना पड़ता है कि ये मैं नहीं कर रहा, ये कुदरत कर रही। और हम जो ज्ञानी है, कर्मयोगी है, भक्त है, सज्जन है, अच्छे विचारक है, उन्होंने किसी न किसी रूप से मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा जीसस क्राइस्ट, मेरा पैगंबर, मेरा महावीर, मेरा बुद्ध कहीं मेरा लगा है और ये मेरा सदा श्वास की तरह साथ रखोगे तो कभी जीवन में निष्फलता नहीं है। अभी श्वास चली जाए आप समझे क्या हो, इसलिए कहानी सुना दूं। बात बड़ी सरल है लेकिन समझने की है। नगर से 100 साल के बाद मंत्र था। एक शहर का बहुत बड़ा आदमी नगर से मर जाता है, लाखों लोग शमशान ले जा रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं सीताराम सीताराम राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है। तो हमारे बच्चे महात्मा भी उधर से जा रहे हैं, कुछ लोगों को रोका, कहा भाई सब लोग लाखों लोग बोल रहे हैं राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है, ये क्यों नहीं बोल रहा है, कहा ये मर गया। अच्छा जो मर जाते हैं वो राम नाम नहीं बोलते, और जो मर जाते हैं वो चार के कंधे पे चलते अपने पट पर नहीं चलते, आप अपने पट पे चलता है राम राम बोलते चलता जो दुनिया मरे मरने दोस्ती। हमें किसी के सहारे श्वास चली गई मर गए, इसलिए तुम्हारा राम तुम्हारा कृष्ण जब भूल जाओगे तो जैसे अर्जुन के साथ घटना घटी उससे भी खराब घटना हमारे आपके साथ घटे। उसे हर श्वास में याद करो, हर चाय में भोजन करो। हमारे साधुओं में क्या है, आप भंडारा होता है जल राम रोटी राम, राम राम ही बोलते हैं, तो जब रोटी राम जल राम तो राम को खिलाते हैं तो कमी कैसे आएगी। आप तो कहते मैं खिला रहा हूं, या विचार करो। इसलिए आप प्रधानमंत्री हैं कि राष्ट्रपति, क्या पट्टा वाला इकरार वो आपका कर्म। मैं प्रशंसा की बात इसलिए करना चाहता हूं कि मैं जानता पूरा जगत मेरा स्वरूप है, मैं विश्व का महात्मा जाति पाति का नहीं, मेरी साधुता ये सुगंध है और सुगंध सबकी है, जाति पाति हो सकते हैं कि हिंदू हो अच्छे घर में जन्मा, ये सबका आत्म गौरव ले सकता हूं, लेकिन सुगंध पूरे विश्व की है, इसलिए मेरी साधुता की सुगंध पूरे विश्व की है, लेकिन जो बताना चाहता हूं साधुता के आधार पर जाति पाति का आधार। आज हमारे जितने अच्छे संत हैं पूरी दुनिया में उनकी वाणी का प्रचार हो, चाहे गुरु नानक देव हैं, चाहे सूरदास हैं, चाहे तुलसीदास हैं, और बुरा मानिएगा चाहे वो कुरान चाहे वो बाइबल। कुरान किसी विशेष के लिए गौरव है लेकिन कुरान के सुगंध से सब, बाइबल किसी विशेष व्यक्ति के लिए है, और हर धर्म में सत्य प्रेम की बात की गई, तो हम आप धर्म से सत्य प्रेम लेकर आए। अभी पर्यावरण की बात छोड़िए, और सत्य प्रेम हिंदुस्तान में है तो क्या अमेरिका में नहीं, वो पर्यावरण की बात छोड़िए, सिखाया गया किया गया या विचार किया, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। सत्य का आधार रामायण, प्रेम का आधार कृष्ण श्रीमद् भागवत। हम जब जगत में रहे तो मर्यादा से रहना पड़ेगा, नहीं दुनिया को भाग्य पहन, लेकिन अपने देश को बचाने में अपने परिवार को बचाने में हमें बचाना है, और किस तरह हमारा देश बचे परिवार बचे यही मर्यादा है, इसलिए कृष्ण के साथ कभी कभी मर्यादा दिखाई नहीं पड़ती, प्रेम है। आज पूरा विश्व कह रहा है इस देश को बचाने में परिवार को बचाने में, कृष्ण कहता है मैं तेरा मित्र हूं गुरु हूं, तुझे बचाना मेरा धर्म है, मैं अपने धर्म का पालन करता हूं। यहां पर थोड़ी बात करना चाहूंगा, कभी कभी आप लोग मेरे पास बातें करो, मारा भी ये करो वो करो, अर्जुन जैसी हालत आपके हो जाए। कृष्ण ने एक संकेत दिया, मेरा धर्म रहा, मैं गुरु हूं, गुरु का धर्म है बचाना, मां का धर्म है बचाना, पिता का धर्म है बचाना, गुरु का धर्म है बचाना। इसी को जा मनोवैज्ञानिक ढंग से मैं लीला से और खुले आम कहता था, इस संस्कृति को चाहे घर का आदमी हो कि घर के बाहर हो, अगर नष्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं आपसे कहता हूं, आपके हाथ की माला मैं लेकर के आपके हाथ में राम का बाण दूंगा या कृष्ण का सुदर्शन दूंगा, माला दूंगा। ये हाथ में माला रखने से आप कमजोर नहीं बने, बाण भी लेना पड़ेगा संस्कृति को बचाने के लिए, चाहे घर का हो या बाहर का। या देखिए छोटे छोटे बातों से आज मनोवैज्ञानिक भारत से सीखो सीखो, यू हैव टू लर्न फ्रॉम इंडिया, इंडिया टीचिंग। मां यशोदा नाराज हो जाती है, तुझे आज मक्खन खाने को नहीं मिलेगा। मां क्यों? बहुत तेरी शिकायतें हैं, अच्छा मां शिकायत नहीं आई है, गोपियों के घर जाकर मक्खन की चोरी तो नहीं करेगा, नहीं करूंगा। लेकिन मां थोड़ा सा मक्खन लगा दो, जब मैं दोस्तों में जाता हूं गोपियों में तो पूछते हैं कि सीधे घर से आ रहा है कि चुरा गया है, तो जब चुरा के मक्खन खाता हूं तो नहीं देखते, लेकिन जब मैं कहता सीधे घर से आपके साथ खेलने आ रहा हूं तो मेरे मुंह पर उंगली लगा देखते हैं कि यशोदा का मक्खन कैसा है। मां तो नाराज है, मुझे मक्खन मत खिला, लेकिन यहां मक्खन लगा दे, नहीं लगाएगी तो उत्तर देना मेरे लिए मुश्किल होगा, और फिर कहेंगे मेरी माँ की बुराई करेंगे, और मैं पुत्र हूं, अगर मेरी माँ की बुराई कोई दोस्त करेगा तो मुझसे सहन यशोदा करेगा। जा विचार करो, एक कितनी ऊंची बात है। अब इसी का दूसरा रूप गोपियां आके कहती, तुम्हारा लाल मक्खन चुरा के खाता क्यों नहीं समझाती, कहा मेरे घर में कुछ कमी है तो मैं लाल चुरा के खाएगा। गोपियां चली गई। अब भावा ये दुनिया में माता पिता गुरु ही जानते हुए छिपाते हैं, बाकी दुनिया में कोई नहीं। तो माता पिता गुरु अपने शिष्य का अपने पुत्र पुत्री का छिपाते हैं, इसलिए भगवान जी। लेकिन किसकी जो पहली कहानी सुनाया है, मेरे कारण शिष्य के कारण पुत्र के कारण अपने माता पिता गुरु की बदनामी भी नहीं होनी चाहिए, ये हमारी संस्कृति। विचार कर, जब आप में विषाद आता है कंफ्यूजन होता है तो किसको याद है, समाधान आ जाएगा। इस समय आपका क्या धर्म है, बस राम से भी जब पूछा गया थोड़ी गलती सीता की, आपने कुछ नहीं कहा, जबरदस्त विचार है, बताओ पति का धर्म क्या है। मैंने अपने धर्म का पालन उसे वापस जानता हूं, ठीक है समय में। नरसिंह अवतार में प्रहलाद को भी कुछ कहा जाता है, लेकिन प्रहलाद ने भी यही कहा मुझे पिता का धर्म नहीं चाहिए, और जो कुछ किया मुझे नहीं सुनना है, पुत्र का धर्म बताइए। आप पुत्र ऐसा काम करे कि पिता की मुक्ति हो जाए। तो जब आप किन कर्तव्य मूढ़ हो जाते हैं, आपकी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, बस एक बात याद रखना, अपने गुरु अपने संतों की, कि इस समय इस क्षण आपका धर्म क्या है उसका पालन करो, चाहे वो किसी के भूल जाए चाहे किसी के प्रति भूल जाए, क्योंकि धर्म पालन में सबको आप प्रसन्न नहीं कर सकते, आपको बताओ, लेकिन अपना धर्म देखिए और धर्म की रक्षा करोगे तो आपकी रक्षा होगी, आप बचोगे। इसलिए मेरे सामने अक्षर जो प्रश्न उठता है, जब आप व्यतीत हो जाते हैं, स्वामी जी समझ में आता क्या कर, तो उसका आते मेरे एक समय तुम बड़े भाई हो, तुम बड़े भाई के धर्म, तुम छोटे भाई हो, छोटे भाई क्या था, वकील साहब जानते हैं नजदीक की बात है, आज 10-15 किलोमीटर की बात है मेरे पास भाई, दोनों बहुत ही बड़े हैं, अपने समय के साथ दोनों समाज में बड़ी प्रतिष्ठित और बड़े हैं, स्वामी जी क्या कहा, मगर तुम छोटे हो, नए साल पर बड़े भाई को प्रणाम करने जाओ, स्वामी जो मुझे गाली देगा, मैंने कहा गाली मुझे पड़ेगी मैं देगा, तुम जाओ। वो गए दोनों गले मिले, तब पता चला कि धोबी लोग भाइयों को किस तरह रखते, आपका तो आप छोटे भाई हो, छोटे भाई को बड़े भाई के पास जाना, फिर जो कुछ होगा मैं देख लूंगा, मजे आ गया, आप पूछ रहे हैं तो आपको कहूंगा, यही मैं आपसे कहा, आप पुत्र हैं कोई बात हो जाए पुत्र का धर्म मैं बताऊंगा, आप पिता हैं तो पिता का धर्म बताऊंगा, आप पति हैं तो पति का धर्म बताऊंगा, उसी तरह ख्याल रखिए, नहीं तो निर्णय आप नहीं कर सकते, कैसा भी विचार लोग दें उनसे प्रभावित ना होकर या विचार कर। महाभारत दुर्योधन के मन में विचार आया कि चलो 5 गांव दे, लेकिन सलाह न मां से लिया न पिता से लिया, दोस्तों से लिया, कर्म दोष पर और बुरा मानिए, हाथ जोड़ के कहता था, एक मनोवैज्ञानिक बात है, बड़े प्यार से कहता हूं, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन बड़े प्यार से कहता हूं, मनोविज्ञान के आधार पर अच्छी से अच्छी सलाह आपको आपकी मां आपके पिता आपके गुरु दे सकते, बाकी दुनिया में कोई नहीं दे सकता, कर्ण के आधार पर मित्र है लेकिन मां बाप पर वो अपना बदला लेना चाहता, मां बाप भी लेना चाहता, इसलिए मित्रता के आधार पर मैं आपके साथ हूं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि मित्र से भी सलाह लोगे तो अपना लाभ देकर ही, अपना लाभ जब देखेगा तभी आपको सलाह देगा और नुकसान देखेगा तो कभी आपको सलाह नहीं देगा, कर्ण की बात है। कर्ण सोचता है, पढ़िए मानव, अगर इन दोनों का मेल हो गया तो मेरा महत्व कट जाएगा, अर्जुन के सामने मैं ही लड़ सकता हूं तभी तक मेरा महत्व है, मामा ने भी यही सोचा पुराणी सपने मां कि मैं गधा छोड़कर आया, मेरा जैसा फिर कोई मूर्ख नहीं, दोनों मिल गए, और उन्होंने किस तरह सलाह दी, ऐसा सोचिए कि दुनिया किस तरह आपको गलत सलाह देती है और आप समझ नहीं पाते, कर्ण और मामा सपने दोनों सलाह देते हैं। मांझे मामा बोल मित्र कन बोल एक ने भांजे कहा एक ने मित्र कहा मित्र जब तक मामा इनकी चाल के सामने ये कभी जीत नहीं सकते। चाल बोलना ज्ञान नहीं बोलना समझ नहीं बोलना चाल चाल मतलब अपना काम कैसे बना चाल सत्य की बात नहीं चाल की जहां सत्य वहां चाल चलने क्या चल और कर्ण कहता है मित्र जब तक मैं हूं इनमें से किसी की ताकत नहीं कि कुछ कर जाता लेकिन जहां सोचो तो सही भविष्य का भय पैदा हो गया हम हमेशा तो नहीं रहेंगे तू भी हमेशा नहीं रहेगा ये किस बड़ा ही चतुर है जब हम नहीं रहेंगे तो पांच गांव को देगा लेकिन पांच गांव की व्यवस्था ऐसी है किस कर देगा कि तेरे बच्चों को भागना पड़ेगा इसलिए भविष्य देख करके तू निर्णय कर देना है कि नहीं यही बात आपके पास जिस भगवान ने आज आपको दिया है भविष्य में नहीं देगा कुछ लोगों के विचार सुनकर के वर्तमान को खत्म करके अपना भविष्य का सत्यानाश कर रहे हैं। यहां पर मित्र ने भविष्य का भय पैदा किया आज लोग मेरे पास आते महाराज मेरे बाद मेरे पुत्र का क्या होगा मैंने कहा नालायक पैदा किए हो तो क्या होगा पुत्र खुद को लायक बनाओ चिंता करने कोई जरूरत नहीं इसलिए मनसन ने बहुत सुंदर कहा और हमारे आप ही कहा है हमारा ही आदान लेकर जाए डोंट बिल्ड द फ्यूचर का द चिल्ड्रन बच्चों के लिए भविष्य में बनाओ डू बिल्ड द चिल्ड्रन फॉर द फ्यूचर बच्चों कितना तैयार करो कि अपना भविष्य खुद बना ले तुम्हें उनका भविष्य बनाने की जरूरत है तुम बच्चों को बनाओ तैयार आप खुद तैयार हो जाइए सारे धरती कम में रिकवरी आप फेस में पढ़िए डाकदार कहते मेरी सारी पुस्तकें जला दो धरती कम में सारे मंदिर चले जाएंगे सारे सज्जन पर जाएंगे लेकिन फिर भी परमात्मा अच्छे लोगों को पैदा करेगा इसलिए तुम चिंता ये न करो कि मेरे बात पढ़ो ये चिंता मत करो कि मेरे बात क्या होगा तुम्हारे पहले भी हुआ हो रहा है होता रहेगा ये भविष्य का विचार पैदा किया हम आप भी आधे भविष्य में जबकि भविष्य नाम की कोई चीज नहीं तो मित्रों से अभिप्राय लो लेकिन वो देखो उसके पीछे उनका स्वागत नहीं तो मनोविज्ञान कहता है मित्र अच्छे हैं लेकिन सलाह तो अच्छी माता पिता को जिसमें गुरु की सलाह सुप्रीम मानी गई संभव है माता पिता को बुरा मानिए थोड़ी लाजत भी हो कैसे बताऊं ऐसे 50% देखा महाराज जी लड़कियों को अमेरिका पढ़ने भेजू मैंने कहा भेजू वापस आएगा कि नहीं क्योंकि बुढ़ापे में काम आएगा कि नहीं इसलिए कहता लेकिन गुरु तो आपको देखता है इसलिए गुरु का स्थान से और आपका विकास देखता है गुरु जब बोल दे रामायण देखिए दशरथ राम और लक्ष्मण को देने के लिए तैयार नहीं विश्वामित्र ने मांगा मेरी सेना ले लो सोना चांदी ले लो लेकिन मैं राम और लक्ष्मण को नहीं राक्षसों के विरोध में कदम करने के लिए राम लक्ष्मण को मांगा यज्ञ अच्छे काम का विनाश कर आप जानते हैं मजबूत विश्वामित्र ने सोचा कि इनका गुरु तो वशिष्ठ ये रोज कहता है गुरु जी सब कुछ आपका है तो इसका कुछ है नहीं क्या मांगू समझ नहीं था कहते वशिष्ठ आप इनके गुरु हैं राम और लक्ष्मण को मांग रहा हूं ये रोज आना दशरथ कहते सब कुछ आपका है એ ભિખારી જગ્યા માંના એ સબ કુછ આપકા હૈ કાતે લે જાઓ લેકિન દશરથ કે હિંમત નહીં કોઈ કે મેં કભી કામ ના કરું ફિર દશરથ સે પૂછા ગયા આપ ક્યોં નહીં દિયે કા મેં દે સકતા થા લેકિન ગુરુ કા આશીર્વાદ સે જબ ગયે તો ગુરુ ઇતના આશીર્વાદ દેતા હૈ વો અપના કામ ભી કરેંગે સફળ ભી હેંગે ઓર વાપસ આ જાયેંગે મેં ભેજ સકતા થા લેકિન ગારંટી નહીં થી કે વાપસ આયેંગે કે નહીં ઇસલિયે ગુરુ કા મહત્વ વિશેષ માને તો જબ કભી આપકે કર્તવ્ય વિમૂળ હો જાય તો આપકા જો ગુરુ સે પૂછો ગુરુ આપકો રાસ્તા બનાયેગા કે સફળતા ભી મિલેગી ઓર કલંક ભી કોઈ મિલને વાલા કલંક ભી તો દેખિયે હમ આપ કહાં કમજોર બનતે હૈ મિત્ર કે આધાર પર મિત્ર બનાઈએ ચલિયે લેકિન જબ નિર્ણય કી બાત આયે ઓર સમજ મે નહીં આયે તો અપને ગુરુ રાવણ કે પાસ સબ કુછ હૈ કમજોર ક્યોં બના એક રૂપ કા કિતની કહાનિયા મેરે પાસ આઈ રૂપ પર આસક્ત હો કરકે લોગ કિતના સત્યાનાશ કિયા પહોંચના મેરે પાસ દુર્યોધન કી આંખ સત્તા પર હૈ અબ કહતા આપકે પત્ની સુંદર વો આપકા હક હૈ રાવણ કા સીતા પર કોઈ હક નહીં કોઈ હક નહીં અબ ફિર આ ગયા ધર્મ જહાં કોઈ અપના હક નહીં उसे अपना बनाना धर्म है और अधर्म सत्यानाश करेगा कभी आपको जीवन देने वाला आपको अपना हक चाहिए किसने भी यही कहा अर्जुन तुझे अपना हक चाहिए मैं हक के पक्ष में इसलिए कह रहा हूं युद्ध कर अपने कर्तव्य का पालन कितनी सुंदर बात है जहां विचार था भरी सभा में धृतराष्ट्र ने कहा था मेरे भाई के पुत्र बड़े होंगे तुमका राज उनको वापस कर दूंगा कहां दिया तो एक जगह रूप की बात है एक जगह सत्ता की बात है और आज जितनी कहानियां बड़े लोगों की सुन रहा हूं कहीं रूप की बात है जहां हक नहीं और कहीं सत्ता और पैसे की बात है जो हक नहीं इसलिए दोनों को कष्ट भोगना पड़ा जेल में जाना जहां आपका कोई हक नहीं हमें नहीं जानना परमात्मा देव जिसने कल दिया आज दिया देता रहेगा लेकिन दूसरे का हक पर नजर लगते ही हम अपने धर्म को भूल जाते धर्म से चुत हुए और सत्यानाश हुआ जा विचार सत्यानाश का कारण क्या है सीता को क्रोध आया क्रोध में क्या हो गया दुख की शुरुआत हुआ मैं आपसे कहता हूं सुनो समझो अगर ठीक है तो सुधारो नहीं तो ठोक दो उठा के फेंक राम के पास लघुस वाल्मीकि के द्वारा भजनकार है श्लोककार है लक्ष्मण को क्रोध है राम कहते पहले सुनो अगर तुम सुनने के लिए नहीं तैयार हो तो रास्ता कैसे निकले यही मैं आपसे कहता आप मित्र की सुनो दुश्मन की सुनो सबकी सुनो सुनने के बाद विचार करो आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो विचार क्या करोगे निर्णय क्या राम को क्रोध नहीं आया पहले शांत हो जा इसलिए मेरे प्रिय आत्मन क्रोध में आप कमजोर हो जाते और जब आप कमजोर बनते हैं तो आपका निर्णय भी कमजोर होता है सीता इतनी महान शक्ति है नहीं क्रोध में क्या कह लक्ष्मण तेरे नियत था आत्मज्ञान भी कहता है हम कितने विद्वान हैं कितने शक्तिमान हैं लेकिन जब तक हमारे अंदर क्रोध का प्रभाव रहेगा हम ना ठीक से समझ सकते हैं और ना ठीक से कोई निर्णय क्रोधी आदमी समझ भी नहीं सकता और निर्णय भी नहीं ले सकता जो खुद नहीं समझ सकता उसका निर्णय कैसे समझ में आएगा इसलिए आपसे कहता कैसी भी परिस्थिति हो थोड़ा सा आधार, क्योंकि क्रोध आपका स्वभाव नहीं है। एक क्रोध आपको कमजोर बनाता है, आपकी शक्ति को छीण करता है। शिशुपाल में बड़ी शक्ति थी, एक क्रोध के कारण सारी शक्ति कट गई। दुर्योधन में भी शक्ति थी, इसलिए क्रोध से बचो। तो मन कहां कहां कमजोर होता है, आपके मन में अपरंपार शक्ति है, कमजोर कब बना किसी अभिप्राय से, जहां अपना हक नहीं उसे देख करके, चाहे पैसा हो कि रूप हो। क्रोध के क्षणों में अच्छी बात हम सीख नहीं पाते, इसलिए ठीक सलाह भी नहीं देते। इसलिए हमारे यहां सामान्य बात है, जब आपको क्रोध आए थोड़ी देर रुकिए। भगवान बुद्ध के पास कोई आया, भगवान बुद्ध ने कहा नदी में से पानी लाओ। पानी लाया, कहा रख दो, इसमें अपना चेहरा देख के बताओ। कहा पानी तो डबाडोल है। कहा रुको, फिर अपना चेहरा है। तुम क्रोध में आए हो, इसलिए तुम अपने को नहीं ठीक से देख पा रहे। पानी की हलचल में आप अपना जैसे स्वरूप नहीं देख रहे हो, ऐसे विचारों की गलत तरंग में भी आप अपना अस्तित्व नहीं समझ पा रहे हो। तो आप सुंदर हो, लेकिन पानी की तरंगों का अपनी सुंदरता नहीं देख पा रहे हो। आपके विचार भी सुंदर हैं, लेकिन किसी के कहने से क्रोध आने जो तरंग उठ रही है, इसलिए आपका विचार गायब। कभी आए थोड़ी देर रुको तो सही, फिर देखो आपकी मन की स्थिति परिस्थिति को ठीक कर देंगे। इसलिए कहा गया है थोड़ी देर रुको, तुरंत कोई निर्णय मत लो। आपका जीवन बहुत कीमती है, कितना सुंदर जीवन। ये पानी स्थिर है, सुबह देखिए नदी का जल स्थिर है, लेकिन पवन के कारण आपका मन स्थिर है, लेकिन लोगों के विचारों से हलचल पैदा हो रही है। उसी हलचल तरंगों को दूर करने के लिए मैं आपको कह रहा हूं, हमें किसी से नफरत नहीं करना, लेकिन कोई कुछ कहे से समझने की कोशिश भी करना, नफरत स्वयं में कमजोरी है। किसी से घृणा नहीं करनी है, ये घृणा भी आपकी कमजोरी है। इस तरह सुन करके, देख करके, खा करके, पी करके, चल करके, काम करके अगर पश्चाताप होता है तो आपका उद्धार नहीं, आपका संस्कार नहीं है। हम पर क्यों पैदा होता, क्योंकि अपनी जगह पर ठीक नहीं है। अगर अपनी जगह पर आप ठीक हैं तो आपको मैं कहता हूं, बड़े प्यार से कहता हूं, विवेकानंद के शब्दों में, अगर आपका तन और मन शक्तिमान है तो किसी बड़े पहाड़ को देखकर भयभीत न बनो। तुम समझ करके एक एक कदम चलते रहो। और विवेकानंद कहते हैं जो पहाड़ इतना ऊंचा था, धीरे धीरे चलते चलते वो आपके पांव के नीचे आ जाएगा, चिंता करने की कोई जरूरत। थोरो ने बड़ी सुंदर बात कही है, ऐ व्यक्ति तुम में ताकत है, तुम नदी को अपने पीछे ला सकते। कहा कैसे, मैं तैर करके उस पार जाऊंगा, मेरे में ताकत है, मेरे विचारों में ताकत है, किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए मैं तैयार हूं। इसी पर एक काल स्ट्राइक की कहानी सुना दूं, खास बच्चों के लिए। 10 बच्चों से कहा गया कि तुम नदी पार करो, जो पहला नंबर आएगा उसे इनाम मिलेगा। 9 बच्चे नहीं पार कर सके, एक दुबला पतला बच्चा पार किया। कहानी है, भाई तुमसे भी ज्यादा शरीर से समझे प्यारे भाई, तुमसे भी ज्यादा शरीर से सशक्त बालक थे। तेरा तो शरीर कमजोर है, फिर भी कैसे पाना। कहा दो दिन पहले मैं अपने गुरु के पास गया, माय मास्टर करके मैं अपने गुरु के पास गया कि मुझे एक स्पर्धा में कंपटीशन में भाग लेना है, मुझे पहला नंबर आना है। गुरु ने कहा विचारों में ताकत है तो शरीर तेरा साथ है, लेकिन आज से ही तू कान में रू डाल, किसी की नकारात्मक बात मत सुनना, कोई आशीर्वाद दे लेना है भाई को जीतेगा, लेकिन कोई तेरा शरीर देख के बोले कि कमजोर है उसकी बात ही नहीं सुनना, अभी से कान में रू डाल दे। इंटरव्यू में कहता है, दूसरे बच्चों से पूछा गया भाई शरीर सशक्त था लेकिन आप नदी क्यों नहीं पार कर पाए। कहा कुछ लोगों ने बोल करके कि नदी में मगरमच्छ है मेरे मन को कमजोर कर दिया, किसी ने कहा नदी गहरी है, किसी कहते कमजोर बातें बोल बोल के लोगों ने मेरे मन को कमजोर कर दिया, और जो दसवां कमजोर था वो कहता मैंने किसी कमजोर बात सुना नहीं, मन मजबूत था इसलिए शरीर भी साथ दिया। नदी में हलचल क्यों है पवन, आपके मन में हलचल क्यों है, दूसरों की बातें सुन रहे, कान में रू डाल लो, हमें किसी नकारात्मक बात नहीं सुनने। या सोचो तो सही, हर घर से लोग महान बने, कई लोग पूछते बड़ा जब क्यों नहीं पूछते, मैंने कहा इसलिए गरीब घर से भी लोग बड़े आदमी बने, अमीर घर से भी बने। तो मैं तो आपको आपकी शक्ति का परिचय कराना चाहता, मुझे आपके परिचय की कोई जरूरत नहीं, एक ही परिचय है कि परमात्मा ने तुझे तेरे मन में अटूट शक्ति दी है, किसी के कहने से देखने से मन को कमजोर ना बना, बस नायम आत्मा बलि ने लगा। हमारे ऋषि मुनि कह गए जाति पाति की बात नहीं की, विचार की बात की। मैं आपके घर पे आता हूं, आप लोग अच्छा भोजन कराते, कॉफी पिलाते, चाय पिलाते, आनंद से पीता हूं, कितना आनंद आता। अब एक मनोवैज्ञानिक बात, चार घंटे के बाद आपका फोन आ जाए, गुरु जी आपकी तबीयत ठीक है, मैंने कहा क्यों कुछ तबियत। कहा गुरु जी आपके जाने के बाद पता चला कि दूध में छिपकली मरी पड़ी थी, इसे तो बड़ी जल्दी थी, तो चार घंटे तक गुरु जी को कुछ नहीं हुआ, छिपकली सुनते उल्टियां होने लगी और पटेल सर जी को बुलाना पड़ा। मन कमजोर होते ही देखो कितना जबरदस्त परिवर्तन। आज पूरा विज्ञान मान रहा है, रावण ने भी भेजा था लेकिन कहा अमृत है, तनिक भी शंका नहीं थी और विष भी अमृत बन गया। विज्ञान कहता नहीं, हमारी आपकी बात, ऐ मनुष्य तो अपने मन की शक्ति से विष को भी अमृत बना सकता है और नहीं कमजोरी से अमृत को भी विष बना सकता। सांप बेजा नाग बेजा मूर्ति बन गई और ये जो फिलासफर्स हुए उसमें कंफ्यूशियस हुआ, उसने हमारे आपके जीवन को पढ़ करके चाइना का लोग हुआ, उसने एक ही शब्द किया है हमारी बात लेकिन जबरदस्त बात उसने अपने शब्दों में, नर नारी सबके लिए ऐ मनुष्य आज तू अच्छा है कि बुरा है, आज तू बलवान है कि शक्तिमान है, उसके पीछे किसी व्यक्ति का हाथ है जिसने अच्छा संस्कार दिया तो उन्हें स्वीकार किया तो अच्छा बना, जिसने नकारात्मक संस्कार दिया तो कमजोर बने। इसलिए हम आप कमजोर नहीं बनते, हमें कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि सुनने के बाद कमजोर होते हैं, सुनने के बाद कमजोर हुए इसका मतलब हुआ कि हम कमजोर नहीं। आप सोचते हैं डाउट क्या है, मनोविज्ञान क्या था, फेथ मेक्स यू स्ट्रांग, ये श्रद्धा आपको बलवान बनाती है एंड डाउट ब्लेस यू। ये शंका ही आपको कमजोर बनाती है, बाकी कुछ भी नहीं। पूरे भारत का भ्रमण किया हो, कर्नाटक जाइए तो आज सांपों की खेती होते, चाइना वाले से सब दिखा आगे पीछे खाते, वहां सांपों की खेती होते, बच्चे नहीं डरते। 78 में गया था, उस समय मुझे बता गया कि 250 किस्म के सांप होते हैं, जिसमें जहरीले 10-12 किस्म के हैं, हिंदुस्तान में केवल 3 किस्म के हैं, और नई खोज हुई है तो मुझे सुधार देना, बता देना 78 के बाद। बाकी विचारों से ही जहां चढ़ता है, अब कोई आगे काम कर सकता, विचार उतर गया, बाकी कोबरा काटेगा, जहरीला काटेगा तो कोई मंत्र से होने वाला नहीं है, ये आपको बता दो, ये विचारों की बात है। इसलिए आज का जो विषय रखा गया, मन क्यों नहीं लगता, मन को जगाना है, मन को समझाना है, परमात्मा में लगाना है, या विचार परमात्मा बलवान है और विचारों से बलवान होकर जाओगे तो प्रसन्न होगा। हमारा लड़का फेल होकर आए हमें नहीं अच्छा लगता, एक अच्छे विचारों के साथ अच्छा काम करके जाओगे तो खुश होगा, फेल होके जाओगे, कमजोर बन के जाओगे तो फिर उसी क्लास में आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बहुत सोच करना पड़ेगा। विचार मन को जीतने के लिए आपको स्वयं अपनी कमजोरी दूर कर दी, आपने बावन का पेड़ पकड़ लिया तो छोड़ेगा क्या? या विचार एक मनोविज्ञान की बात बताता वकील साहब, हाथ दीजिए, ये स्वभाव नहीं है, एक अभिनंदन है, प्रसन्नता है। अभी आधे घंटे तक हाथ नहीं छोड़ू तो वकील साहब कहें महाराज जी बहुत ज्यादा ऊंचे चले गए क्या, छोड़िए। अब स्वभाव की बात खुला है, मैं अपने बात मुख्य बांधे ठीक है, 15-20 मिनट लेकिन खुला हाथ। इसी तरह अच्छा विचार खुला विचार है, इसमें लंबे समय तक रह सकते हो, संकीर्ण विचार, क्रोध का विचार, राग द्वेष ईर्ष्या में आप लंबे समय तक, और जो लंबे समय तक नहीं रह सकते हो आपका स्वभाव, ये देखिए महाराज 24 घंटे चिंता है तो मेरे कारण चिंता आते लोग कई बार बुरा मान लिया, कहते महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, कोई कोई घर की बात करेंगे, मैंने कहा मेरे कारण दुखी हो, काम नहीं आप काम दुखी, तो दुख का कारण क्या है बताते हैं। अब यही करता देखिए हमारी ऋषि मुनियों की बात, आपको पुत्र में आ सकती है, आपको धन में आ सकती है, आपको कोठी में आ सकती है, इसी आसक्ति को बदल दो, अपने ईस्ट में टोटल सरेंडर होकर के अटैचमेंट ला दो, पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलेगा। मैं केवल आपकी आसक्ति को बदलना चाहता हूं, आपकी 10 करोड़ की कोठी है आसक्ति, आपके बच्चे बड़े लायक हैं आसक्ति है, लेकिन जब पूरे विश्व को समझ लोगे तो आसक्ति प्रेम में बदल जाएगी, और जब प्रेम आएगा तो त्याग अपने आप हो जाएगा। आसक्ति में लेने की बात आती है, प्रेम में देने की बात आती है, इस आसक्ति को परमात्मा में लगाओ, और परमात्मा के पास प्रेम है, आप परमात्मा को प्रेम करोगे तो जो है वो आपको देगा, दुनिया में आसक्ति करोगे तो आसक्ति बढ़ेगी, परमात्मा से प्रेम करोगे प्रेम बढ़ेगा, और आपका जीवन हर तरह से सफल होगा। तो मैं प्रेम की बात कर रहा था, लव कहते हैं, मन को हटाओ। मैंने आपके हाथ से हाथ मिला, आनंद आया, क्यों आनंद, वो आनंद प्रकट हुआ, आप मेरे पास आए, मैं आपके पास गया, कुछ विचार दिए, आपको आनंद आया, मुझे आनंद, आनंद अंदर ही बैठा, प्रेम हमारा स्वभाव है। रामायण बेटा तुझे क्रोध नहीं हो तो थोड़ी देर बैठ, नहीं माँ इतने लंबे समय तक क्रोध नहीं होता। एक माँ का क्या धर्म है तुमने समझा? कहां समझा? ये हमारी संस्कृति कहती है कई कई के माध्यम से, कई कई कहती है मैं जानती थी कि मेरा हक क्या परिणाम लाएगा, लेकिन मैं अपने बच्चे को जिसे पीड़ा से पैदा किया उसके प्रति आसक्ति थी, लेकिन आसक्ति प्रेम में नहीं बदल पाई। तेरी आसक्ति राम के प्रेम में गई इसलिए तू ऐसा किया, मेरी आसक्ति नहीं बदल पाई इसलिए मैंने ऐसा किया। वहां आसक्ति और प्रेम की बात है, आसक्ति हमारा सत्यानाश करती है और प्रेम हमारे जीवन को। फिर भी राम ने कह दिया, माँ कुछ भी हो तेरी जैसी मां मिलना बहुत मुश्किल। कहा क्यों? अरे तेरा पुत्र जिसके लिए तूने इतना दुख उठाया, तेरी आसक्ति भी प्रेम में बदली और तूने अपने बच्चे में आसक्ति नहीं पैदा की, प्रेम पैदा किया। प्रेम त्याग पैदा करता। कई कई माँ तूने अपने बेटे भरत को कहा कि आते ही उनका राज उनको दे देना, अगर आसक्ति होती तो कहती मत देना मत देना। अब तेरी अनाशक्ति प्रेम में बदली, जा अच्छी तरह पढ़िए। तो मैं आपकी जो आसक्ति अटैचमेंट कोठी में है, धन में है, पुत्र में है, ये आसक्ति प्रेम में परमात्मा में ला दोगे, जो परमात्मा आपकी रक्षा कर रहा है वही आपके बेटे की भी करेगा, कोठी की करेगा, सब की करेगा। आप जब सो गए तो आपकी रक्षा कौन कर रहा है? बात बड़ी कड़वी है। स्वामी रामदेव अपने समय के बहुत बड़े, जब कोई हिंदुस्तान में जल्दी ग्रेजुएट नहीं होता उस समय मास्टर डिग्री वाले और काम करने वाले, समय में संन्यास दिया। उनके दो बच्चे थे, पत्नी ने कहा आप संन्यास लीजिए, आपके विचार बच्चे हैं, आपका झुकाव संसार में नहीं है, इसलिए आपको मैं गिराना नहीं चाहता, लेकिन दो बच्चों का प्रबंध कर दो जाओ। स्वामी राम ने अपनी पत्नी को देवी को धन देवी दिया, लेकिन देवी अगर उसका उसमें नाम था तीरथ था, बाद में राम तीरथ होगा, अगर तेरा पति तीरथ राम आज मर जाए ऐसी जगह में तो तेरे बच्चों का कौन पालन करेगा? कहते परमात्मा भास्तिक है। तीर्थ राम की पत्नी का जवाब है कि परमात्मा पालन करे। तो राम तीर्थ कहते देवी मेरे मरने के बाद तेरा तेरे बच्चों का पालन परमात्मा करेगा, वही आज भी कर रहा है और करता रहेगा, इसलिए मुझे संन्यास की इजाजत है। जाओ ये मैं आपसे आज आपने कल का क्या बोलूंगा, लेकिन याद रखिए कल की चिंता में आज का आनंद मत गवाओ। जो आपकी रक्षा कर रहा है, आपके खुद की कर रहा है, वही हमेशा करता रहेगा। उसको जब तक श्वास है अपने साथ रखो और सोने से पहले तक अपने कर्तव्य का पालन करो। कल जब उठेंगे देखा जाएगा, अगर उठे नहीं तो क्या होगा। आज अपने कर्तव्य का पालन सोने से पहले, कल उठेंगे तो आगे करेंगे। आज हमने 16 अध्याय गीता सुनाई, कल आप उठोगे मैं उठूंगा दो अध्याय सुनाऊंगा, लेकिन जब भी इस 16 अध्याय का जो कर्म है, जब भी जागेंगे जब लेंगे 16 अध्याय तो हमारे साथ रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो मन की जो कमजोरियां है उसको आप समझें, मन तो है ही ताकतवर, तो कमजोरियों को जीतने के लिए कल जब बात हुई तो मैंने कहा मान साहब सत्य भाई तरह लीजिए, तो सादगी से ये 14 जनवरी मनाई गई, लेकिन जो विचार दिया अगले साल भी अच्छी तरह हम मनाएंगे और मनाते रहे। आप सबकी कृपा से हम ऐसी शक्ति के उपासक हैं जहां लक्ष्मी की हमारे शिष्यों में कमी नहीं है, लेकिन पहले परमात्मा को बैठाता हूं फिर लक्ष्मी। इसलिए आपसे बड़े प्यार से कहता हूं, इस सादगी की जो कमी रह गई है, क्योंकि पहले तो मैं तैयार ही नहीं था, क्योंकि हमारे परिजन ने रात झटक दे दिया। इतने परम ज्ञानी थे, लेकिन सीता के विदाई के समय रोने लगे। गुरु कहते आप विदेह हो, कहता हूं विदेह, लेकिन मैं किसी का बाप नहीं, मैं आपका गुरु हूं। पहले मां हूं, फिर पिता हूं, फिर गुरु। गुरु के आंखों में आंसू नहीं आएगा, लेकिन माता पिता के आंखों में कौन सा आएगा। तो मैं मां भी हूं, पिता भी हूं और गुरु भी हूं। इसलिए माता पिता में थोड़ा आंसू आएगा, लेकिन आप लोगों ने कहा थोड़ी बचने में भी तकलीफ हुई, थोड़ा ये हुआ। आयोजन बहुत अच्छा रहा, सबने मिलकर किया। कांतिलाल भागवत वाले, जैसी पटेल, बिहारी लाल जी, अमर सिंह, वीर सिंह, हमारे और सब आए, अच्छे लोग आए, हम सब किए। डॉक्टर सैनी है, डॉक्टर पटेल है, रणछोड़ भाई है, मगन भाई है, भीखू भाई है, हमारे संत भी आए हैं, सभी अच्छे अच्छे लोग आए हैं। छोटे छोटे लोगों ने सब तरह सेवा की है। मैंने कल नहीं कहा था, मैं तो शिव का आराधक हूँ, तो बड़े प्यार से कहूँ, मेरे प्यारे शिव के पास सांप भी है, शेर भी है, भूत है, प्रेत, मेरे पास सब है। भूत भी है, प्रेत भी है, सांप भी है, नाम। अगर किसी ने आपको सताया तो भूत है, वो मेरा है। किसी ने आपको काटा तो मेरा सांप है। तो अपना समझ करके मेरे शिष्यों में से कोई भूत की तरह सताया, कोई सांप की तरह काटा, तो मुझे माफ करना, कम उनका मालिक मैं। तो मालिक पर दोष दीजिए। अच्छी तरह आयोजन हुआ, सब हुआ, सब ने बड़ा सहयोग दिया। इन बदन का सहयोग अच्छा रहा, मन के भाई का रहा, आप सबका सहयोग। और जैसे कल कहा, तो वैसे मेरे बाद मेरी पूरी शक्ति का उत्तरण सुमूर्ति हुआ है। मेरी कदम को मेरे विचारों का उत्तरण, आश्रम की शक्ति का उत्तरण, संचालन का उत्तरण सुमूर्ति में आए, और मेरे विचारों का अवतरण छवि राज में। ये दोनों का आदर कीजिए, बगल में सुमूर्ति उनका भी आदर कीजिए, बगल में हमारे छवि उनका आदर कीजिए। इन दोनों के बिना मैं कुछ भी नहीं। ये हमारे दोनों नाक की श्वास है, दोनों आंख है, मेरे अपने प्राण है। इन प्राणों को आप हमेशा स्वीकार करना, इनका आदर। जमुनादास जी बड़े योग्य भजनीक है, उनका मंडल है, और दो तीन दिन से खूब आपको सुनाए, आपको आनंद मिलाए। मैं तो साधना करा के 6 साल में परमात्मा तक आपको पहुंचाता, वो तो एक भजन में ही आपको परमात्मा तक पहुंचाता। थोड़ा मैंने कहा था कि भाई थोड़ा इस तरह से मनाए हैं, आपके भजन में लोग नाचते कूदते हैं, लेकिन सादगी से मना रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था नाचना कूदना नहीं, सब करना नहीं। उनका तो भजन ऐसा है कि बिना कहे नाचने लगते। अरे मैं नाचता हूँ, गुरु नाचता है, तो आप तो नहीं नाचता। तो सभी को जो लोग हर तरह सहयोग किए उनको आशीर्वाद देता। और मैं संतों को मुझे बताया गया, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर काट दो कि पैर काट दो, मेरा स्वभाव चंदन की तरह कुछ होने में। लेकिन फिर भी अगर मेरा कोई विरोधी है तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, अगर संत है मेरा विरोधी तो मेरे से ज्यादा उसको सिद्धि। अगर ये सब देख करके कोई जलता है तो मेरे ज्यादा, क्योंकि मैं किसी की सिद्धि और सुख से जलने वाला नहीं। और मेरे विरोधी इसलिए दे रहा है कि हमारे गुरु ने बताया है, हमारे आचार्य ने बताया, जो लोग संत और सज्जन का विरोध करते हैं, वो मर करके पागला बनते हैं और 500 वर्ष तक काम पाँव करते हैं। तो मेरा विरोध करके कोई 500 वर्ष पागला ना बने, इसलिए भगवान मेरे विरोधियों को सदबुद्धि देना कि भले भक्त न बने, भले सिद्ध न बने, लेकिन एक अच्छे इंसान को है, एक अच्छे इंसान कम से कम मेरे कारण कौआ तो नहीं बनेगा, काम काम तो नहीं करेंगे। तो आप सबको वंदन करते हुए, सबको याद करते हुए, जो मैंने विचार दिया है, आप सशक्त हैं, आप भूल गए हैं, आपको फिर से बताता, किसी की पूजा करो, किसी मंदिर में जाओ, लेकिन आप हर जगह आप हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। कृष्ण अगर पूरे ब्रह्मांड को बचा सकता है, तो आप अपने अच्छे गुणों से अपने समाज को, अपने परिवार को भी बचा करके, शक्ति पैदा करके, लायक बना करके, समाज में योग स्थान फिरा करके, जमीन से आसमान तक पहुंचा सकते हैं। आज 14 जनवरी है, बच्चे कम आए होंगे क्योंकि पतंग उड़ाते हैं। जैसे आपका बच्चा आज धरती पर बैठ करके पतंग को आकाश तक उड़ाता है, ऐसे मेरे विचारों से आप और आपके बच्चे आसमान तक पहुंचे, यही मैं समझती हूं।